Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhakt ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Prashnopanishad ke 6 prakaranon mein se तृतीय प्रकरण का विचार हो रहा है। तृतीय प्रकरण में ऋषि कौशल्य ने प्राण के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए आचार्य पिपला जी से अलग अलग 6 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपलाद जी ने दे दिया। दशम कंडिका तक इससे प्राण का स्वरूप निर्धारित हुआ कि प्राण स्वरूपतः अनादि नहीं सादि है। सादि है तो किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है, उसका कारण कौन है तो बताया गया परमात्मा है। जो उपास्य प्राण है वह परमात्मा की संतान है। सीधे परमात्मा की उपासना नहीं, परमात्मा के पुत्र की उपासना बताई जा रही है। समष्टि प्राण ये पुत्र है परमात्मा का, उसकी उपासना यहां पर बताई जा रही है। और ये जो समष्टि प्राण रूप परमात्मा का पुत्र है, उत्पन्न होकर के शरीर में किस निमित्त से प्रविष्ट होता है तो कहा कर्म से। और इसमें रह करके अपने आप को 5 विभागों में विभक्त करके तथा वागादि गौण इंद्रियों को इस शरीर में कैसे तत्तत् स्थानों में नियुक्त करता है, ये जो प्रश्न था इसका भी उत्तर दे दिया कि पायुपस्थादि स्थानों में अपने अपानादि वृत्तियों को वह नियुक्त करता है और स्वयं सम्राट स्थानीय प्राण चक्षु श्रोत्र में रहता है। ये इसकी आध्यात्मिक 5 वृत्तियां हैं। इन आध्यात्मिक 5 वृत्तियों को बताते समय जो पंचम वृत्ति है उदान, इसे बताया गया उत्क्रमण कराने वाला। ये जो इस शरीर से प्राण का अपने स्वामी जीव तथा अन्य गौण प्राण और अपने अवांतर भेदों के साथ उत्क्रमण हो जाता है तो वो उत्क्रमण कौन कराता है, तो उदान वायु, ये बताया गया। और फिर कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा गया कि बाह्य शब्दित जो अधिदैव प्राण का स्वरूप है तथा अध्यात्म स्वरूप है इनका वर्णन हुआ। आदित्य जो स्वर्ग लोक की अधिष्ठात्री देवता है, अंतरिक्ष लोक की अधिष्ठात्री देवता वायु, पृथ्वी लोक की अधिष्ठात्री देवता अग्नि और एक सामान्य वायु और एक सामान्य तेज, ये 5 आदिदेव में ये प्राण ने ही रूप धारण किए हैं। इन 5ों को अधिदैव 5ों प्राण के रूपों को कहा जाता है अनुग्राहक। और अनुग्राह्य कहा जाता है प्राण के जो अध्यात्म पांच अवांतर भेद पहले बताए गए उन्हें वे अनुग्राह्य हैं और अनुग्राहक हैं ये आदित्य आदि और अनुग्राह्य कोटि में ही अधिभूत रूप भी आता है। अधिभूत है बाह्य शब्दित इन अधिदैव आदित्यादि से अनुग्रहित होने वाले प्राण वृत्ति से अनुग्रहित होने वाले जो गौण प्राण शब्दित चक्षुरादि है उनसे गृहमान उनके अपने अपने विषय रूपादि इन्हें कहा जाता है अधिभूत और इनका भी विधारण कर लेता है इनको इनके ग्रहण अनुकूल चक्षुरादि को बना देता है यही उनका एक प्रकार से विधारण करना है। ये प्राण इस प्रकार अपने आप को अधिदैव रूप तथा अध्यात्म रूप बना करके सबका विधारण करता बनता है। और पूर्व में भार्गव के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्राण में उपासना के लिए कहीं एक गुण बताए गए हैं द्वितीय प्रकरण में उन सब गुणों से युक्त और यहां पर निर्धारित स्वरूप वाला जो प्राण है इसकी अहंग्रह उपासना का विधान करने वाला वाक्य है ग्यारहवीं कंडिका। उसमें बताया गया कि जो कोई भी प्राण उपासना का अधिकारी है वह इन दो प्रकरणों में वर्णित प्राण के गुण तथा स्वरूप को अच्छी तरह से अपने बुद्धि में पहले सुनिश्चित कर लेता है कि प्राण के प्रजापतित्वादि ये गुण है और प्राण का यह स्वरूप है अध्यात्म स्वरूप प्राण अपान व्यानादि अधिदैव स्वरूप आदित्यादि और अधिभूत स्वरूप रूपादि ऐसा प्राण का स्वरूप निश्चित कर लेता है और पूर्व में बताए गए गुणों से विशिष्ट यह प्राण है ऐसा पहले बुद्धि में सुनिश्चित कर लेता है। और ये तो हुआ एवं विद्वान शब्द का अर्थ और ये उपलक्षण है बाकी अधिकारी के जो तीन विशेषण हैं उनका विद्वान से अतिरिक्त और एक और तीन विशेषण होते हैं कि वो फलार्थी होना चाहिए। तो प्राण उपासना का जो फल बताया गया है प्राण का सायुज्य जो चाहते हैं कि इस वेष्टि कार्यक्रम संघात में से हमारी अहंता हट जाए और हम समष्टि प्राण रूप से अवस्थित हो जाए ये प्राण का सायुज्य है। और ये प्राण का सायुज्य जो चाहते हैं अदृष्ट फल और दृष्ट फल है प्राण का प्राण उपासना का उपासक जिस वंश में उत्पन्न हुआ उस वंश का अखंड रूप से चलते रहना उसकी संतान का अविच्छेद ये दृष्ट फल है। और ये दृष्ट फल तथा अदृष्ट फल चाहने वाले को कहा जाता है फलार्थी और फलार्थिता भी हो प्राण के गुण तथा स्वरूप का बोध भी हो साथ में ये उपासना करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए इसलिए समर्थ एक विशेषण होता है वो समर्थ होना चाहिए उपासना करने में। तो तीसरा विशेषण भी हुआ और चौथा होता है अपर्युदस्त होना चाहिए का मतलब शास्त्र प्राण उपासना करने की अनुमति प्रदान करता हो। तो ऐसा अधिकारी जो प्राण की अहंग्रह उपासना करता है। उस अहंग्रह उपासना का स्वरूप होगा कि जो निश्चित हुआ है प्रजापतित्वादि गुणों से विशिष्ट प्राण का स्वरूप, प्रत्येक के चित्त में अहम वृत्ति स्वभावतः बनती रहती है। यदि चित्त है तो उसका परिणाम अहम वृत्ति उदित होगी होगी, और जो अनुपासक होते हैं उनकी स्वभावतः अहम वृत्ति, जो भी वृत्ति होती है उसका कोई न कोई आलंबन होता है। निरालंब कोई वृत्ति नहीं हुआ करती, आलंबन कहते हैं विषय को, वो किसी न किसी विषय को आश्रय करके ही उत्पन्न होती है। वृत्ति उत्पन्न हुई हो और उसका कोई भी विषय ना हो ऐसा नहीं होता, वृत्ति है तो सविषय ही रहेगी, उसका कोई न कोई विषय होगा। तो जो अनुपासक होते हैं उनकी अहम वृत्ति का आलंबन बनता है वर्तमान में प्रारब्ध भोग के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ये वेष्टि कार्यक्रम संघात है, इसी को उनकी अहम वृत्ति आलंबन बनाते हुए उत्पन्न होती है। सहजता से मैं के रूप में इसी कार्यक्रम संघात को दिखाती है। और प्राण की अहंग्रह उपासना का स्वरूप होगा ये जो अहम वृत्ति उत्पन्न हो रही है, साधक को पहले देखना होता है कि अहम वृत्ति का उद्भव स्थान क्या है, वो कहां से उत्पन्न होती है। जैसे नदियां हैं उनका भी कोई न कोई उद्गम स्थान होता है ना, गंगा जी का गोमुख है तो नर्मदा जी का अमरकंटक है, ऐसे अपनी अहम वृत्ति का उद्गम स्थान कौन सा है वो देख लें, और इसे उत्पन्न होते समय ही प्रयत्न करें कि वेष्टि कार्यक्रम संघात को वह अपने अभ्यास वशात जो आलंबन बनाएगी। तो इस वेष्टि कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने से रोके और समष्टि प्राण का जो बुद्धि में स्वरूप सुनिश्चित हुआ है ये मैं हूं करके फिर अपनी अहम वृत्ति को उसी समष्टि प्राण के उन प्रजापतित्वादि गुण से विशिष्ट स्वरूप को आलंबन बनाने के लिए प्रेरित करें। उत्पन्न होते ही वह उपास्य के स्वरूप को ही आलंबन बनाते हुए उत्पन्न हो जाए, इसके लिए प्रयास। ये माना जाता है आपने प्राण की अहंग्रह उपासना प्रारंभ कर दी। अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक को ऐसा ही करना होता है कि अपनी अहम वृत्ति की उत्पत्ति का स्थान जहां है वहां पहुंचना होता है। तो अहम वृत्ति उत्पन्न होगी बुद्धि में ही, तो वहां बुद्धि में पहुंच करके, बुद्धि में पहुंचने के लिए शरीर से मन को अंदर करना होगा ना, अंतर्मुख होना होगा। शरीर से अंतर्मुख होकर के बुद्धि में पहुंच जा, और बुद्धि में पहुंच करके जैसे ही मैं यह वृत्ति बन रही है तो उसे इस वेष्टि मनोमय कोष को या वेष्टि प्राणमय कोष को या वेष्टि अन्नमय कोष को आलंबन न बनने दे उस अहम वृत्ति का। समष्टि जो प्राण है यहां दो प्रकरणों में वर्णित स्वरूप वाला, उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बना ले। तो उपासना शुरू हुई। और ये नहीं कि एक बार आप वहां बुद्धि में पहुंचे और अहम वृत्ति उत्पन्न होते ही उसे अपने आलम्बन के रूप में इस समष्टि प्राण को पकड़वा दिया और आपका काम पूरा हुआ, उपासना पूरी हुई, ऐसा नहीं। बुद्धि में कितने जन्मों से जो जो भी वेष्टि शरीर प्राप्त करते आ रहे हैं कर्म का फल भोगने के लिए, उस वेष्टि कार्यक्रम संघात को मैं के रूप में ग्रहण करके वेष्टि उपाधि का ही मैं के रूप में संस्कार अत्यधिक है। और वे संस्कार आपको अपने विषय से अहम वृत्ति को हटा करके अनायास ही समष्टि प्राण में स्थापित करने नहीं देंगे। वहां दो हैं बुद्धि में, एक तो आप हैं उपासक और एक है अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से वेष्टि कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में ग्रहण करते करते, अनुभव करते करते प्राप्त किए हुए वेष्टि कार्यक्रम संघात के आत्मरूप से संस्कार। वे संस्कार और आप ये दोनों भी एक ही अहम वृत्ति को अलग अलग आलंबन पकड़वाना चाहते हैं। है वृत्ति एक मैं इत्याकारक अहम वृत्ति, उसमें ये पूर्व जो संस्कार हैं वे चाहेंगे कि यह अहम वृत्ति वर्तमान में जो वेष्टि कार्यक्रम संघात है इसी को आलंबन बना दें, इसी को विषय कर लें। इसके लिए प्रयास रहेगा उन संस्कारों का, और आपका प्रयास रहेगा कि संस्कार अहम वृत्ति को जो आलंबन पकड़वाना चाहते हैं वह अहम वृत्ति आलंबन न पकड़ करके शास्त्र जिस समष्टि प्राण को अहम वृत्ति का आलंबन बनवाना चाहता है वह बन जाए अहम वृत्ति का आलंबन। इसके लिए आपका प्रयास होगा। तो दोनों भी आपस में अहम वृत्ति को अपने अपने विषय के ओर ले जाने के लिए खींचते रहेंगे। तो जो बलवान होगा उसे सफलता मिलेगी और जो दुर्बल होगा वह परास्त होगा। तो वर्तमान में तो बलवान है असंख्य जन्मों के संस्कार, वे क्या करेंगे आपके प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। वे चाहेंगे कि यही शरीर अहम वृत्ति का विषय बने और फिर ये जो संसार है संसार के बाहर खूब इधर उधर भटकता रहे, शरीर के बाहर आकर के रूपादि विषयों में विचरण कर लें। ऐसा तो चाहेगा वह वेष्टि शरीर का संस्कार, और आप चाहोगे ये प्राण का ही चिंतन होता रहे मैं के रूप में। इसके लिए फिर हमेशा यही करते रहना होता है साधक को, उपासक को। अहंग्र उपासना का स्वरूप यही रहेगा कि जैसे ही वे अनात्मा के संस्कार उसको ले जाएंगे आपकी अहम वृत्ति को वेष्टि के तरफ, आप उससे अहम वृत्ति को रोक करके समष्टि प्राण में पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। और समष्टि प्राण में पहुंच गई तो ज्यादा से ज्यादा वहीं पर वह रुकती रहे, स्थिर रहे, ऐसा आप प्रयास ये रहेगा साधक का। ये उपासना तो ध्यान है ना, और ध्यान का अर्थ होता है विजातीय वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ध्येयाकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह। तैल धारावत, यही तो ध्यान का स्वरूप है, यही उपासना का स्वरूप है। तो ये करना है तो हमेशा अहम वृत्ति का प्रवाह समष्टि प्राण के आकार का ही चलता रहे। बीच बीच में ये जो संस्कार वेष्टि उपाधि के आकार का आपकी अहम वृत्ति को बनाते रहेंगे तो माना जाएगा विजातीय वृत्ति से व्यवधान हो रहा है। बीच बीच में ये विजातीय वृत्ति आ रही है तो इस विजातीय वृत्ति को रोकना बन गई तो तुरंत हटाना और फिर प्राण के ही आकार का निरंतर अहम वृत्तियों का प्रवाह बना रहे इसके लिए प्रयास। और ये प्रयास करना होता है, पतंजलि जी कहते हैं बड़े आदर के साथ, ये नहीं कि करना पड़ रहा है इसलिए करें मजबूरी में। इस साधन के प्रति आदर बुद्धि भी होनी चाहिए। और वो एक छुट्टी के दिन मात्र हो जाए, सप्ताह में एक दिन, ऐसा भी नहीं, निरंतर भी होना चाहिए। आदर पूर्वक हो जाए, निरंतर हो जाए, और एक महीना, दो महीना, एक साल, डेढ़ साल, ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक। और अहंग्र उपासना का तो माना जाता है परिपाक, वो साधन पक गया, पूर्ण हो गया, ये माना जाता है। अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक की अहम वृत्ति उतनी अनायास सहजतया अपने उपास्य को ही आलंबन बनाए जितनी सहज अनुपासक की अहम वृत्ति उसके शरीर को आलंबन बनाती है। शरीर को मैं के रूप में पकड़ने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? पलक ये उन्मेष निमेष करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? सामान्य श्वासोश्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये जैसे सहज हो रहा है, इतना सहज अहम वृत्ति आपके उपास्य को ही आलंबन बनाते हुए उत्पन्न होती रहे, आपको पता भी न चले। जैसे उन्मेष निमेष होता है लेकिन पता भी नहीं चलता, पलके गिरती है फिर उठती है, लेकिन हम अपना दूसरा कार्य करते रहते हैं, उन्मेष निमेष कब हुआ पता ही नहीं चला। ये सहज हो गया, अनायास अभ्यास में आ गया, स्वभाव बन गया। ऐसे अहंग्रह उपासक का ये स्वभाव बन जाए कि मैं इस वेष्टि उपासक शरीर में रहता हुआ भी उसे मैं के रूप में अनुभव में आ जाए समष्टि प्राण ही, इतना सहज हो जाए, तब माना जाता है उपासना परिपक्व हो गई। जीते जी इतना सहज हो जाए तो जो यहां उपासना का फल बताया गया है ना, प्राण उपासना का, यह एवं विद्वान प्राणम वेद न हस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति, ये जो फल बताया गया